ये आकाशवाणी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए चार दिन से भी कम समय का शेष, सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान के चौथे दिन अब तक 4,774 लोगों ने वोट डाला। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज की। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि सड़क पर होने वाली मौतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना है। और भीषण गर्मी के चलते नोएडा तथा गाजियाबाद में जिलाधिकारियों ने प्राइमरी से लेकर आठवीं तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी घोषित की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए चार दिन से भी कम समय रह गया है और सभी राजनीतिक दल वोटरों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
आज शाम भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के संगम विहार इलाके में जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मालवीय नगर इलाके में एक रोड शो किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के मयूर विहार इलाके में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पटपड़गंज क्षेत्र में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। श्री केजरीवाल ने शाहदरा और गांधीनगर क्षेत्र में भी नुक्कड़ सभाएं की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज शाम बवाना गांव में देहात महापंचायत को संबोधित किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने नांगलोई और टिकरी कला में रोड शो किया। राजधानी में चुनाव प्रचार 23 मई बृहस्पतिवार शाम को समाप्त होगा। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर मतदान 25 मई शनिवार को होगा। अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दिल्ली के संगम विहार में चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री शाह ने भ्रष्टाचार के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की।
2875 करोड़ का शराब घोटाला किसने किया? 5000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण का घोटाला किसने किया? 1000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला किसने किया? लैब एक्सरे का 4000 करोड़ का घोटाला किसने किया? गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला 2000 करोड़ का किसने किया? बस खरीदी का 1000 करोड़ का घोटाला किसने किया? और 125 करोड़ का शीश महल किसने बनाया? अरे केजरीवाल जी, अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है।
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में शाम 5 बजे तक लगभग 57% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। पश्चिम बंगाल में 73%, लद्दाख में 67% से अधिक, झारखंड में लगभग 62% और ओडिशा में लगभग 61% मतदान की खबर है। इधर उत्तर प्रदेश में लगभग 56%, जम्मू कश्मीर में 54% से अधिक, बिहार में 52% से ज्यादा और महाराष्ट्र में लगभग 49% मतदान दर्ज किया गया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 61% मतदान की खबर है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान के चौथे दिन कुल मिलाकर 4,774 लोगों ने वोट डाला है। चुनाव आयोग के अनुसार सबसे अधिक पश्चिमी दिल्ली में कुल 1,148 लोगों ने मतदान किया, वहीं सबसे कम उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुल 397 लोगों ने मतदान किया है। आयोग के अनुसार कुल 5,406 मतदाताओं ने घर से वोट करने के लिए आवेदन किया है। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए पिछले सप्ताह नई दिल्ली में मतदान के लिए इस विशेष सुविधा की शुरूआत की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने से संबंधित याचिका दायर करने वाले एक छात्र पर लगाया गया जुर्माना माफ कर दिया है। कानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र अभिषेक चौधरी ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में उसने आबकारी नीति घोटाला मामले में उस समय जेल में बंद श्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने की अपील की थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए अभिषेक पर 75,000 रूपये का जुर्माना लगाया था। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से कहा कि ये याचिका खारिज किए जाने के योग्य है। याचिका पर विचार करने के शीर्ष अदालत के निष्ठा को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाही भरे तरीके से दायर की गई है। आखिर में याचिका को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। जनहित याचिका में कहा गया था कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई खामियां और विसंगतियां हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल,
आम चुनावों के मतदान पर विशेष कार्यक्रम,
विभिन्न अंचलों से मतदान की खबर,
संवाददाताओं से मिलेगी सीधी जानकारी,
विशेषज्ञों की भी सुनेंगे राय आकाशवाणी गोल्ड पर।
सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर रेलवे ने कहा है कि अंबाला मंडल के शंभू स्टेशन पर किसानों का धरना समाप्त हो गया है। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि धरना समाप्त होने के बाद सभी रेलगाड़ियों के उनके नियमित मार्ग पर तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है।
किसान एजिटेशन जो शंभू पे चल रहा था उसके कारण लगभग 60 से 65 ट्रेन जो है लगातार डाइवर्ट या कैंसिल हो रही थी। आज 16 बजे के आसपास जो है वो किसान एजिटेशन खत्म हो गया है और वो लोग जो शंभू ट्रैक पे लोग किसान बैठे थे वो उठ गए हैं, जिसके कारण पंजाब की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक है वो नॉर्मलाइज हो गया है। यात्री अब आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। पहले शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे उसके कारण ट्रेन की डाइवर्शन वगैरह होती थी, ट्रेन लेट होती थी। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी यात्री जाना चाहते हैं पंजाब हरियाणा की तरफ, जेएनके की तरफ विजिट करना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान कर लें।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के दुर्गापुरी इलाके में आज सुबह कपड़ों के एक शोरूम में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, लेकिन तब तक लाखों का माल जल चुका था। आग पर काबू पा लिया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं ने भी राहत तथा बचाव कार्यों में सहायता की। ये शोरूम दुर्गापुरी में गली नंबर 4 के कॉर्नर पर है। दिल्ली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त जीएस सिद्धू ने बताया कि इनके पास से 4000 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही शराब की तस्करी पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही थी। श्री सिद्धू ने बताया कि इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक 4-पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि राजधानी में सड़क पर होने वाली मौतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना है। विभाग ने बताया कि हाल के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 15 मई 2024 तक 511 घातक दुर्घटनाओं में 518 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 544 दुर्घटनाओं में 552 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों की कड़ाई से कार्यान्वयन, मजबूत जागरूकता अभियान तथा नवीन यातायात प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन से सामूहिक रूप से इस सकारात्मक परिणाम में योगदान मिला है। एक सक्रिय दृष्टिकोण, यातायात उल्लंघन के खिलाफ कड़े प्रवर्तन और जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने वाली पहल के माध्यम से शहर भर में सड़क सुरक्षा मानकों को सफलतापूर्वक बढ़ाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि विभाग ने 10 ऐसी सड़कों की पहचान की है जहां इस वर्ष सबसे अधिक घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर यात्रियों को जल्द ही नमो भारत ट्रेनों की तेज और आरामदायक यात्रा के अलावा खरीदारी, भोजन और बैंकिंग सेवाओं जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधाएं आरआरटीएस स्टेशनों के परिसर के भीतर और निकास क्षेत्रों के आसपास वाणिज्यिक स्थानों पर उपलब्ध होंगी, जिससे यात्री सुविधा में वृद्धि होगी। पहले चरण में यह सुविधा साहिबाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशनों पर मिलेगी। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिसकी अंतिम तारीख 4 जून है। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदीनगर नॉर्थ के बीच 34 किलोमीटर के सेक्शन में 8 स्टेशनों पर नमो भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हैं। इस सेक्शन में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन शामिल हैं। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के असर को देखते हुए नोएडा तथा गाजियाबाद में जिलाधिकारियों ने प्राइमरी से लेकर आठवीं तक के सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी है। प्रशासन ने पत्र लिखकर इसकी सूचना सभी स्कूलों को जारी की है। नोएडा में रविवार को पारा तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, इसके और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो तीन दिन और भी तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। पंजाब में सभी सरकारी निजी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को कल यानी 21 मई से 30 जून तक की गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले ये छुट्टियां 1 जून को घोषित की गई थी, लेकिन राज्य में भीषण गर्मी के कारण सरकार ने तारीख बदल दी है। दिल्ली वासियों को आज भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहते हुए 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहते हुए 29.2% रहा। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनमणि ने बताया कि दिल्ली के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है।
दिल्ली में जो 17 तारीख से जो हीटवेव टू सीवियर हीटवेव चल रहा है, आज फोर्थ डे है और काफी स्टेशन स्टिल 45 का एबव है और हमारा जो हाईएस्ट रिपोर्टेड नजफगढ़ वो भी 47 प्लस रिपोर्ट कर रहा है और इसी के साथ साथ लोधी रोड सफदरजंग ये भी 44 प्लस रिपोर्ट हो रहा है। तो दिस इज दी ऑब्जर्वेशन डे, आज ऑब्जर्वेशन है 20 मई को और हम लोग का जो रेड कलर का जो वार्निंग है नेक्स्ट 4 दिन तक हीटवेव टू सीवियर हीटवेव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहेगा और तापमान जो है 45-44 रहेगा, 45 ट्यू स्टेशन 44 डिग्री रहेगा एक या दो स्टेशन।
भारत के महाधिवक्ता आर वेंकट रमणी ने आज इस बात पर बल दिया कि दुनिया भर के सभी प्रतिस्पर्धी नियामक डिजिटल बाजारों के उभरते रुझानों से जूझ रहे हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में ये बात कही। श्री वेंकट रमणी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में अब निजता और आंकड़ों का महत्व बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है जो डेटा सुरक्षा कानूनों के महत्व से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। अब तक 6,40,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 10 दिन में 2,81,713 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ की यात्रा की है और 1,20,000 से अधिक भक्तों ने बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बैंकिंग क्षेत्र के शानदार मुनाफे की सराहना की है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध मुनाफा पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा को पार कर गया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध मुनाफा 39% बढ़कर 3,10,00,000 रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 2,20,00,000 का था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस दौरान रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जो कि एक साल पहले की तुलना में 34% अधिक रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोवैक्सीन के प्रभावों पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शोधपत्र गुमराह करने वाला है और इसमें परिषद का भी गलत तरीके से हवाला दिया गया है। भारत ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल हलम की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने पर कल एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। कल देशभर में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। कल कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी दिल्ली में प्रचार के लिए 4 दिन से भी कम समय रह गया है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान के चौथे दिन अब तक 4,774 लोगों ने वोट डाला है। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज की है। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि सड़क पर होने वाली मौतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी बना है और भीषण गर्मी के चलते नोएडा और गाजियाबाद में जिलाधिकारियों ने प्राइमरी से लेकर के आठवीं तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।